विमल कुंड धाम की जय हो। तो विमल कुंड ये काम्यवन का राजा है, ऐसे कहते हैं, तीर्थराज विमल कुंड। जैसे प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, वैसे प्रयाग से भी हजारों गुना शक्तिशाली विमल कुंड है, क्योंकि विमल कुंड में जैसे उसका निर्माण हुआ 84,000 तीर्थ जितने पूरे क्रिएशन में भगवान ने बनाए ब्रह्मांड में, वो तो सारे एक साथ उसमें प्रवेश किए उन्होंने। तो भगवान ने उसको तीर्थराज का नाम दिया उसी समय। ये बहुत बहुत ही शक्तिशाली तीर्थ, लेकिन बहुत दिव्य है, इसलिए सामान्य लोगों की नजरों में इतना वो प्रकट नहीं है। लोग जाएंगे जो प्रसिद्ध तीर्थ है वहां जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, प्रयाग जाएंगे, लेकिन ये रहस्यमय बातें जो हैं प्रेम भरी, ये केवल संतों की कृपा से प्राप्त होती है। तो एक आज भी देश है, सिंध प्रांत है ना हमारे इंडिया में, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में अभी, तो सिंध प्रांत में उसको सिंधु देश कहते हैं, सिंधु देश। तो सिंधु नदी भी वहां बहती है। तो सिंधु देश के राजा थे राजा विमल, बहुत धर्मशील, धर्मपरायण, बहुत ही शूरवीर और भगवान के भक्त थे वो, लेकिन उनको संतान नहीं थी, तो बहुत दुखी थे वो। क्योंकि तो कैसा है ना, गृहस्थों के जीवन में संतान नहीं होने से बहुत इम्पोर्टेंस थी उसका, क्योंकि पितरों को तर्पण करना, उनका श्राद्ध करने के लिए संतान होना जरूरी है। अभी वो लोगों को ज्ञान ही नहीं है, तो संतान होना ही होना उनको पर्पज ही पता नहीं उसका। तो राजा के पास समृद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी, तो वो दुखी होकर अपने गुरु के पास गए और मेरे ख्याल से वशिष्ठा मुनि से मिले। वशिष्ठा मुनि ने त्रिकालदर्शी होने के नाते वो ध्यान किया और देखा कि इसके भविष्य में कहीं भी पुत्र होने का कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ सन। लेकिन वो और ध्यान करते तो उनको उनकी अनुभूति होती है कि इनको 3 करोड़ कन्या आगे होने वाली है। ही विल गेट 300,000 गर्ल्स। क्या बोलेंगे करोड़ को इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में करोड़ है 30 मिलियन, 30 मिलियन गर्ल्स विल बी देयर फॉर यू। तो वो दुखी हो गया बेचारा भी, एक तो पुत्र नहीं था ऊपर से 30 मिलियन 3 करोड़ कन्याओं को प्राप्त तो होगा, तो उनको विवाह भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने साथ में उसके एक और एक लाइन जोड़ दिया कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे 3 करोड़ कन्याओं का उद्धार यानी कि विवाह जो है स्वयं भगवान करेंगे, उनके साथ भगवान उनके पति बनेंगे। और उन्होंने भगवान का वर्णन भी किया कि वो भगवान जो उनका उद्धार करेंगे वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पूरा उनके विग्रह का मतलब दर्शन का अनुभव वर्णन किया उन्होंने कि वो चतुर्भुज होंगे, वो मोर पंख वाले होंगे, वो पीतांबर पहनेंगे और बहुत सुंदर वर्णन किया पूरा कैसे उनको पहचानना है। यथावकाश उनको 3 करोड़ कन्या हो गई, उसने कई पत्नियों से विवाह किया था पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, वो गलत है। वो कृष्ण की द्वारका की पत्नियों का नंबर है, गर्ग संहिता के अनुसार 3 करोड़ है, ध्यान रखना। तो क्योंकि ना 16,100 और 16,150 इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 16,100 और 3 करोड़ में गड़बड़ नहीं हो सकती है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल्टुगेदर। तो यथावकाश इतनी कन्याएं प्राप्त हुई और वो उपवर भी हो गई, और ये राजा तो हमेशा यज्ञ याग में बिजी रहा करते थे, हमेशा बिजी इन टू धार्मिक एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उनका राज्य इतना समृद्ध और शांति सुख से बना हुआ था कि कोई युद्ध बुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा जैसा वो था ना कुलशेखर राजा, जैसे कॉन्स्टेंटली बिजी इन टू राम कथा एंड राम श्रवण। तो यथावकाश उन्होंने जब कन्याएं बड़ी हो गई शादी वाली उम्र की, तो उन्होंने वृंदावन धाम में भेजा अपने दूत को। हाँ सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, बोर तो नहीं हो रहा ना आपको? हाँ सुनो सुनो। तो वो उन्होंने कहा था कि वो आपका जो लड़कियों का होने वाला वर है वो वृंदावन में मिलेगा आपको। तो दूत को सब ओरिएंट किया, पूरा समझाया कि किस व्यक्ति को ढूंढना है आपको, वो जाके बोलो ढूंढ के आओ। तो वो ढूंढने चले गए, तो बहुत ढूंढा, उसके बाद में मिले वो कृष्ण भगवान। वो वन में गौचारण कर रहे ना अपने सखाओं के साथ, वहां मिले उनको वो कृष्ण भगवान, दोनों मिले। उसमें से वो मिला जो पीतांबर पहना हुआ है, नीले शरीर का है और सब कुछ है, सब कुछ मिला, लेकिन एक चीज मैच नहीं हुई, ये दो भुजा वाला था वो चार भुजा वाला बताया गया था, व्हाट ही हैड हर्ड वाज फोर भुजा वाला, और जो दिख रहे हैं वो दो भुजा वाले हैं। तो सब कुछ मैच हो गया लेकिन दो और चार भुजा में अंतर होता है ना बाबा। अभी आप कहेंगे विश्वरूप दास को दो भुजाएं हैं और वो चार भुजा का दिखाई देगा तो आप सोचेंगे ना कि डिफरेंट आदमी है, सेम थोड़ी हो सकता है। यू कांट हैव टू एंड फोर हैंड्स एट वन टाइम एंड यू कैन बी द सेम पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो परेशान हो गया, तो वापस राजा के पास चला गया और राजा को कहा कि सब कुछ ठीक था लेकिन दो के जगह चार के जगह पे दो भुजा दी, दैट मीन मिसमैच। राजा बहुत दुखी हो गया, अरे इतना सा नजदीक आकर भी नहीं मिला। तो उसी समय पे देखो कैसे भगवान की आयोजना होती है, उसी समय पे भीष्मदेव युवा अवस्था में दिग्विजय करते 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 सिंधु देश में आए थे और वो तो मित्र थे तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, तो युद्ध करने के बदले भोजन साथ में कब बैठ के कर रहे थे। तो भीष्मदेव बड़े विभूति हैं, बड़े महाजन हैं, वो पूरे ज्ञानी हैं वो सब तरह से। तो भोजन करते करते उन्होंने भीष्मदेव को पूछा कि क्या करें, अभी एक समस्या हो गई कि सब कुछ ठीक था लेकिन अभी चार भुजा वाले के बदले में दो भुजा वाला दिख रहा है। तो भीष्मदेव ने कहा कि एक रहस्य की गुप्त बात है, यहां तक कि ये बात मथुरा में किसी को कहने की इजाजत भी नहीं है, सबको कंस ने भयभीत करके दंडित करके रखा हुआ है कि कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, क्योंकि कृष्ण का जन्म और कृष्ण का गायब होना ये कंस के मथुरा में बहुत भयंकर विषय था, निषिद्ध विषय था, कोई बात नहीं कर सकता, इट्स प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर, यू कांट डिस्कस अबाउट इट, इफ यू डिस्कस यू विल बी अरेस्टेड। और भगवान का जो अवतार चार भुजा में हुआ था वो वर्णन बिल्कुल वशिष्ठ मुनि ने बताया से मिलता जुलता था, लेकिन भगवान ने देवकी ने विनती किया और वो दो भुजा वाले बालक बने, फिर उनको गोकुल लाया गया, फिर वो दो भुजा वाले बालक नंद बाबा के पुत्र बने और वहां से उनकी परवरिश हुई, फिर वृंदावन में खेलने लगे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये क्या राज है, लेकिन विष्णुदेव शुद्ध भक्त थे भगवान को, उनको पता था राज की बात। तो उन्होंने राज की बात राजा विमल को बताई कि आप जो बालक को देख रहे हैं दो भुजा वाले वही बालक है, वो लीला के कारण और माता की इच्छा के कारण चार भुजा वाले दो भुजा वाले बन गए, आपके कन्याओं के लिए उपवर बालक वही है। तो बड़े खुश होकर, क्योंकि वो दुखी थे ना बहुत, तो विष्णुदेव ने कृपा करके समस्या का समाधान कर दिया। शुद्ध भक्त का जीवन में होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं होती है, शुद्ध भक्त के मिलने से ही वो एकदम आसान हो जाती है और दुख का कारण बनी हुई घटनाएं सुख का कारण बन जाती हैं। संतों का जीवन में अस्तित्व क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन घड़न से जो दुखों की बातें होती है वो संतों के मिलने से उसका सुख में रूपांतर हो जाता है। संत ऐसे उसकी दिव्य दृष्टि देते हैं कि वो दिव्य दृष्टि ज्ञान प्राप्त होने से सारे दुखों का स्रोत जो है वो सुखों का स्रोत बन जाता है। तो दोबारा वो दूत को भेजते हैं कि दोबारा उनको वो जाके लोकेट करते हैं कि भाई यही बालक जो दिखा था। और दोबारा जब वो आते हैं, देखिए पहली बार कृष्ण ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कृष्ण ने देखा उसको, वो कृष्ण को देखा, वापस चला गया, कृष्ण ने अपना लीला चालू रखा। नेक्स्ट टाइम जब पूरा ज्ञान प्राप्त करके लौट के आए तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जो खेल रहे थे ना बालक उसमें वो खेलते रहे, अपने से और एक रूप प्रकट किया और रूप में से किसी को न समझते हुए आकाश मार्ग से उसको मिले। तो उन्होंने दंडवत किया, बताया कि किस पर्पज से मैं आया हूं, तो कृष्ण कहता मैं जानता हूं किसके लिए आया हूं। तो दूसरे रूप में उस दूत के साथ हवाई मार्ग से वो सिंधु देश पहुंच गए और ये वाले रूप में अपने घर चले गए, रोज की तरह मैया के पास पहुंच गए, मैया दूध पिलाया, सब कुछ किया, सेवा किया उनका। और वहां पर जब पहुंचे आकाश मार्ग से तो वो अनंत यज्ञ कुंड के बीच में राजा विराजमान थे, अनेक संतों के बीच में यज्ञ कुंड में यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान ऐसे आकाश मार्ग से आते हैं तो वो खड़े हो जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं इनको। उसी समय अपने 3 करोड़ कन्याओं को दुल्हन बनाकर लेके आते हैं और उसी यज्ञ कुंडों में भगवान से विवाह का आयोजन करते हैं और भगवान 3 करोड़ रूप धारण करके हरेक कन्या की गले में वरमाला डालते हैं। तो हम लोग कहते हैं शुभ मंगल सावधान, वो 3 करोड़ रूप में भगवान उस विधि को करते हैं और उस समय बड़ा सुंदर दहेज देकर भगवान को विदा करते हैं। भगवान 3 करोड़ नव परिणित अपने पत्नियों को लेकर हवाई मार्ग से कामें बनाते हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना आप लोग, 3 करोड़ अपनी नव परिणित विवाहित पत्नियों को लेकर भगवान कामेवन में आते हैं। इसी जगह पर उन्होंने उनके साथ रास रचाया है, साथ साथ में नंदगांव बरसाना में वृंदावन में लीलाएं चल रही है, पैरेलल साइमल्टेनियस, और यहाँ पर भगवान उनके साथ में राज करते हैं और कहते हैं भगवान ने यहाँ सबके लिए महल बनवाया, सबके साथ भगवान यहाँ रहे। हाँ, और राज जब किया उन्होंने तो भगवान और राधा रानी, सॉरी 3 करोड़ पत्नियां और भगवान के शरीर से दिव्य ज्वल निकला, स्वेद और अश्रु निकले, और उस दिव्य जल के एकत्र होने से विशाल कुंड बना, उसका नाम पड़ा विमल कुंड। और विमल कुंड को जैसे निर्माण हुआ 84,000 तीर्थ उसमें तुरंत प्रवेश कर गए, और भगवान ने तुरंत वरदान दिया कि ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान होगा, इसके जो स्नान करेगा वो दोबारा लौट कर इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। और उस विमल कुंड के किनारे पे एक सुंदर मंदिर है, उसका नाम है राजा विमल का मंदिर, राजा विमल का मंदिर, छोटा सा मंदिर है, किसी को पता नहीं है। तो उसमें ना 2 कृष्ण की मूर्तियां हैं। तो हमने पूछा क्या है इसका रहस्य, तो इसका रहस्य है कि कृष्ण भगवान ने जैसे ही विमल को दर्शन दिया और उसकी कन्याओं का उद्धार किया तो उसको भी वरदान दिया, तो उन्हें क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपके जैसे स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए। तो विमल राजा को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, यानी विमल राजा को कृष्ण जैसा ही वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए वहां पर 2 कृष्ण की मूर्ति है, एक विमल की जो कृष्ण के शरीर प्राप्त हुए हैं और एक कृष्ण, दोनों मुरली बजा रहे हैं, और बीच में विमला देवी है, वो शायद दूसरी पत्नी। हाँ हाँ, उनकी सबसे बड़ी जो कन्या जिसका विवाह कृष्ण के साथ हुआ वो विमला देवी, उसकी भी वहां पर मूर्ति है। ऐसा वो विशाल कुंड है वहां पर, इसके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसा ही विमल कुंड जो है वो पूरे गांव-वन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और शंकर जी का एक महत्वपूर्ण स्वरूप गांव-वन में विराजमान है, उसका नाम है कामेश्वर महादेव। वो भी थोड़ा उसके पास में है, लेकिन कामेश्वर महादेव में कहते हैं विश्वानु महाराज ने आकर तप किया था, प्रार्थना किया था राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त होने के लिए। तो कामेश्वर महादेव शिव जी का स्वरूप है, वो भी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। वहां पर एक पंचमुखी शिव भी है, जो स्वयं फूर्त 5 मुख वाले शिवलिंग है वहां पर, पंचमुखी शिव। वहां पर हनुमान जी का बहुत पंचमुखी बड़ा विग्रह है। ऐसे कामवन में बहुत अद्भुत अद्भुत जगह है, तो अभी हमको भी पूरा देखना बाकी है। तो जब कृपा होगी तब प्रकट हो जाएगा हमारे लिए भी, है ना, नहीं तो कैसे प्रकट हो सकता है। जब उनकी इच्छा होगी तो वो एक दिखाएंगे अपने घर का सामान। इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रकट नहीं भी हुआ, एक भी स्थान प्रकट हुआ उनकी कृपा से। जैसे राजा है भगवान, वो अपने घर का क्या जगह दिखाना है आपको, तो उनकी मर्जी। जब उनका दिल होगा तो घर का और एक कोना दिखा देंगे आपको, एक और कमरा दिखा देंगे, एक और चमत्कार दिखा देंगे। धाम का दर्शन हमारे प्रयास से नहीं होता है, हमारे बस करने से, हमारी कथा पढ़ने से, कथा बोलने से धाम का दर्शन नहीं होता है। धाम का दर्शन भगवान की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा संतों की कृपा की वजह से होती है। तो संत कृपा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो ये सब दिव्य दर्शन जो है, उनके घर के रहस्य जो है उसका भेद होता है। हमारी बुद्धि से, हमारे पढ़ने से, हमारे प्रयास से ये सब भेद नहीं होता है। इसलिए कण कण में, क्षण क्षण में धाम में यात्रा करते हुए हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी कृपा का परिणाम है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ विच वी आर हियर एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स। और वो भी देख रहे हैं, उसको क्या देखना है और क्या समझना है, ये भी उनकी कृपा है। वी मे सी मेनी थिंग्स बट वी मे नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ये भी समझ जो है, द रियलाइजेशन ऑफ द थिंग वॉट यू सी इज ऑल्सो द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। Let us chant Hare Krishna Mahamantra to express gratitude from the bottom of the heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.